हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 11 और 12। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वंदनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होना नृपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना खसादया नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबकला धरोष्ठा पूर्णेन्द्रसुंदरमुखाय हरविंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जानि। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधू वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो न परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासवि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय जिसका शीर्षक है शुद्ध भक्तिमय सेवा। अब तक हमने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को विभिन्न देवताओं के उपासकों के विषय में बताया कि जीव को जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो उसके लिए एक पर्टिकुलर देवता की सेवा करके पूजा करके आराधना करके उसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि उसे वास्तविक लाभ चाहिए तो चाहे वो अकाम हो सर्व काम हो या मोक्ष काम हो दारिद्र्य, उसके अंदर चाहे संसार की सारी वासनाएं भरी हुई हों या कोई भी इच्छा न हो या केवल मोक्ष की ही कामना क्यों न हो, तो भी उसे तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उसे परम पुरुष भगवान की ही प्रेममयी भक्ति करनी चाहिए। और जब कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उसको सारे लाभ प्राप्त होते हैं। हर वो वस्तु, क्योंकि संसार की हर एक वस्तु चाहे वो आध्यात्मिक हो या भौतिक हो वो सब भगवान की ही प्रॉपर्टी है, तो जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसे स्वतः वो सारे लाभ प्राप्त होने लगते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है उदारधि, जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा सुशील है, अच्छी बुद्धि है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं श्लोक नंबर 11 में, एतावानेव यजातं इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद्भागवत्संगः। एतावानेव यजातं इह निःश्रेयसोदय भगवत्यचलो भावो यद्भागवत संगतः। एतावानेव यजातं इह निःश्रेयसोदय भगवत्यचलो भावो यद्भागवत संगतः। एतावानेव यजातम्, एतावानम यानी ये सारे जितने भी पूजक हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैदिक शब्दों के अनुसार, एव निश्चय ही यजातम वो पूजा करते हैं इह, यह माना इस जीवन में, लेकिन उनको इस जीवन में तो भौतिक लाभ प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन यदि उनको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनी है, निःश्रेयस, निःश्रेयस उदय मतलब अगर वो वास्तव में ऐसा करते 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 हैं उनको ऐसा लगे कि इससे बड़ी वस्तु चाहिए इससे बड़ी वस्तु चाहिए, तो निःश्रेयस का मतलब होता है सर्वोच्च वर, जो सबसे ऊंची कोटि का जो सर्वोच्च वर यदि वो प्राप्त करना चाहते हैं, सर्वोच्च सिद्धिदायक यदि वर प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो क्या है, भगवत या चलो भावो, भगवती यानी भगवान में अचलो भावो, अचल निश्चल निश्चल प्रेम भगवान के अंदर, ऐसा प्रेम भाव का मतलब होता है स्वयं सुफूर्त आकर्षण, अगर वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि भौतिक वस्तुएं ये तो क्षण भंगुर है। जिस तरह से इस संसार की भौतिक वस्तुओं का आदि और मध्य और अंत होता है, उसी तरह चाहे वो स्वर्ग लोक के भोगों को प्राप्त करें या ब्रह्मांड के सबसे उच्च कोटि के लोक यानी ब्रह्मलोक का सुख प्राप्त करें, लेकिन भगवान ने बता दिया अब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति। यहाँ पर ये बात समझने की है कि ये भौतिक जगत नष्ट हो जाएगा, चाहे उसके किसी भी लोक में आप जाओगे वो सारा जगत नष्ट होगा, और जगत नष्ट होगा मतलब उसके साथ साथ सारे भोगों की सामग्री भी नष्ट हो जाएगी, वहां के सारे देव देवी देवता भी सारे नष्ट हो जाएंगे, और वो व्यक्ति जो इन भोगों के पीछे पड़ा हुआ है तो वो कभी भी आध्यात्मिक आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तो सर्वोच्च आनंद प्राप्त करने के लिए एक ही कारण है, एक ही तरीका है, भगवत ये चलो भाव, भगवान के अंदर अचल भाव उत्पन्न हो जाए। भाव का मतलब होता है कि बगैर किसी वासना के, बगैर किसी लालसा के, बस भगवान को देखकर आनंद आए, उसको देखने की इच्छा हो, उसको प्राप्त करने की इच्छा हो, स्वतः मन में ऐसा हो कि मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। ये भाव जब मन में उत्पन्न होता है ना, ये बहुत साधारण है। हम देखते हैं संसार में श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताते हैं कि जैसे एक युवक एक युवकी की ओर स्वतः आकर्षित होता है, मतलब उसको कोई पहले से प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है, ना ही उसको कोई पहले से क्लासेस दी जाती हैं कि इस युवती के अंदर, इस कन्या के अंदर आपको आकर्षण उत्पन्न करना है। बस देख लिया और उसकी इच्छा होती है कि इससे बात की जाए, इसे मिला जाए, इसको प्राप्त किया जाए। ये भौतिक जगत में ये जो आकर्षण हो रहा है वो तो हमारे लिए पतन का कारण बनता है, लेकिन ऐसा ही स्वतः आकर्षण यदि भगवान के अंदर उत्पन्न हो जाए, बस कृष्ण अच्छा लगने लगे, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा मन में उत्पन्न हो, कृष्ण से बात करने की इच्छा उत्पन्न हो, कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, तो उसको भाव कहते हैं। ये सर्वोच्च सिद्धि है। यदि एक बार मन में कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है ना, तो संसार की सारी वस्तुएं तुच्छ लगने लगती हैं। किसी भी वस्तु में कोई आकर्षण है ही नहीं, बाकी सब तो जड़ है। इन जड़ वस्तुओं में ना तो आनंद है और ना ही संतुष्टि। तो इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि एतावानेव यजातम यजताम इह निःश्रेय सोदय। यदि सर्वोच्च सिद्धिदायक वर कुछ है तो वो क्या है, भगवत यचलो भाव, भगवान के अंदर अचल भाव उत्पन्न हो जाए। और वो कैसे उत्पन्न होगा, बहुत ही सुंदर तरीका उपाय बताते हैं। यत भागवत संगतः, जब कोई भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति करता है, वो भक्त जो भगवान से प्रेम करते हैं, यदि उन भक्तों का संग हमें प्राप्त हो जाता है, उनके साथ रहने से केवल दर्शन मात्र से वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं, केवल उनका एक सानिध्य लफ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो जाए। ये सर्व सिद्धि की जो बात बता रहे ना, थोड़ी देर के लिए भी यदि किसी शुद्ध भक्त का संग प्राप्त हो जाएगा ना, तो फिर वो कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कदोनाय, ये ऐसा नहीं है कि कोई और हमारे प्रेम ये प्रेम हमारे हृदय में डालेगा। ये हृदय में है मगर बहुत समय से, क्योंकि हमने इस प्रेम का उपयोग नहीं किया है, भौतिक वस्तुओं के केवल आकर्षण को अपने जीवन में जगा दी है, भगवान के प्रेम को हमने बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी है ना, इसलिए वो प्रेम जो है वो सो गया है। जैसे ही कोई शुद्ध भक्त उसे प्रेम से हवा मारता ना, जैसे ठंडी हो जाती है अग्नि और उसको हवा करते कैसे भड़कने लगती है, तो उसी तरह से हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम की अग्नि भी प्रज्वलित होने लगती है जब हम किसी शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रवण करते हैं। इसलिए हृदय में सदैव एक ही इच्छा रखनी चाहिए कि भगवान मुझे शुद्ध भक्तों का संग प्रदान करो, बस बाकी सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा, भगवान तो खुद ही मिल जाएंगे, बस शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि सर्वोच्च सिद्धि क्या है, भगवत ये चलो भावो, भगवान के अंदर प्रेम, तीव्र प्रेम भाव जो स्वतः स्फूर्त जो आकर्षण है, और वो यद भागवत संगत अब शुद्ध भगवान के भक्तों के संग से प्राप्त होता है। अनुवाद देखिए, अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव भौतिक प्रकृति के नियम या भगवान की बहिरंगा शक्ति से बद्ध बने हुए हैं। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता रहता है कि वह भगवान का ही अंश है, किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व अतएव वह भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है, तो वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बद्ध हो जाता है, और इस प्रकार आध्यात्म अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। यह जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर माया जाल के पीछे भागने के समान है। भौतिक भोग की सारी योजनाएं, चाहे वे विभिन्न देवताओं के पूजा द्वारा संपन्न हो, जैसा कि इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिकृति प्रगति हो, भ्रम मात्र है, क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याओं को, जन्म मृत्यु जरा तथा रोग को कभी हल नहीं कर सकता। विश्व का इतिहास ऐसे योजना निर्मात्माओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराजा आते जाते रहते हैं और उनकी योजना बनाते हैं, बनाने की केवल कहानी ही शेष रह जाती है, लेकिन जीवन की मुख्य समस्या इन योजना निर्मात्माओं के बावजूद जैसी की तैसी बनी रहती है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर रीति से समझाया है कि इस संसार में ब्रह्मा से लेकर शूद्र जो चिंटी होती है ना, सारे जीव भौतिक प्रकृति के नियम या भगवान की बहिरंग शक्ति से बद्ध है। हर कोई वस्तु वास्तव में जितने भी जीव हैं, चाहे वो शूद्र चिंटी हो या उससे बढ़कर जो ब्रह्मा जी है, वो सब जानते हैं। जब शुद्ध अवस्था में क्या जानते हैं कि भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान की सेवा करके ही आनंद प्राप्त होता है, लेकिन जब वो भौतिक शक्ति पर आ जाते हैं, इस भौतिक जगत में गिर जाते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं, और इस प्रकार वो ज्यादा से ज्यादा संघर्ष करते हैं सांसारिक लाभ प्राप्त करने की और अपने कष्टों को दूर करने की। लेकिन क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं, तो वो ये जान नहीं पाते हैं कि हमें वास्तविक आनंद कैसे आएगा। बस वो समझते हैं कि भौतिक वस्तुएं प्राप्त करके ही आनंद आएगा, तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और आनंद प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, लेकिन वास्तविक समस्या क्या है, जन्म मृत्यु चरा व्याधि। ये वास्तविक समस्या है, ये ना कोई देवी देवता दूर कर सकते हैं, इनको ना ही कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से दूर किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं करोड़ लोग आते हैं जाते हैं, वो हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन ये समस्याएं तो बनी रहती हैं। अब एक मनुष्य को यही समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं। वास्तव में यह मनुष्य जीवन की इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्राप्त हुआ है, किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता लिए बिना ज्ञान के तथाकथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ईश्वर या देवता की परवाह न करने वाले निपट भौतिकतावादियों के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करने की संस्तुति करते हैं, अतएव ये देवता ना तो मिथ्या है ना काल्पनिक है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जो देवता है वो भगवान की तरफ से नियोजित किए जाते हैं कि विभिन्न वस्तुओं को प्रदान करें, लेकिन जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो इन देवताओं को स्वीकार नहीं करते। लेकिन वेदों में बताया गया है कि विभिन्न देवताओं की पूजा करने की संस्तुति की गई है, और ये देवता मिथ्या नहीं है, काल्पनिक नहीं है, देवता हमारी तरह वास्तविक है। लेकिन ब्रह्मांडीय सरकार के विभिन्न भागों का प्रबंध करने में वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है, और इसमें सर्वोपरि देव ब्रह्मा समेत देवताओं के विभिन्न ग्रहों का उल्लेख है। निपट भौतिकतावादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, ना ही वे यह विश्वास करते हैं कि विभिन्न भिन्न भिन्न ग्रहों में विभिन्न देवताओं का आधिपत्य है। वे निकटतम दैवी पिंड ग्रह यानी चंद्रलोक तक पहुंचने के विषय में काफी हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतनी यांत्रिक शोध के बावजूद भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम जानकारी एकत्रित कर पाए हैं, और चंद्रमा में जमीन बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी यानी पट भौतिकतावादी वहां रह नहीं सकते, और अन्य ग्रहों तक पहुंचने की तो बातें करना ही व्यर्थ है क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते। किंतु वेदों के अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे वैदिक साहित्य के कथनों को प्रमाण मानकर उसे स्वीकार करते हैं, जैसा कि हम प्रथम स्कंध में कह चुके हैं, अतएव उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसी के साथ साथ भौतिक जगत की परिधि में स्थित भौतिक आकाश के विभिन्न आवासीय ग्रहों एवं भौतिक आकाश से परे स्थित ग्रहों का पूरा पूरा एवं संतोषजनक ज्ञान होता है, जिस सर्वाधिक प्रामाणिक साहित्य को शंकर रामानुज माधव विष्णु स्वामी निम्बार्क तथा चैतन्य महाप्रभु जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है, और जिसका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों ने किया है, वह श्रीमद् भगवद गीता है, और उसमें देवताओं की पूजा तथा उनके अपने अपने आवासीय लोकों का उल्लेख है। श्रीमद् भगवद गीता 9.25 पुष्टि करता है, यान्ति देव व्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों को जाते हैं, और पितरों के पूजक पितृलोक में जाते हैं। निपट भौतिकतावादी भिन्न भिन्न भौतिक लोकों में रह जाते हैं, किंतु भगवत पद भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने विभिन्न लोकों के विषय में बताया कि जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम अपने प्रयास से चंद्रमा पे जाएंगे और चंद्रमा पे जाने का दावा करते हैं और बोलते हैं वहां पर अभी हम लोग पहले पहुंचे तो सारी जमीन हमारी, अभी हम लोग जमीन बेचेंगे। लेकिन ये तरीका नहीं है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है कि किस तरह से दूसरे लोकों में जाया जा सकता है। जब कोई किसी भी देवता की पूजा करता है तो फिर वो उस लोक में जा सकता है। तो हर एक लोक का एक देवता होता है और हर एक लोक में जाने का एक तरीका होता है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन ये जो वैज्ञानिक होते हैं वो इसको स्वीकार नहीं करते। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो नहीं करते तो वो मूर्ख है। क्योंकि जो बड़े बड़े ज्ञानी जन है, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मधु आचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सब स्वीकार करते हैं कि जैसे जैसे श्रीमद भगवद गीता में लिखा हुआ है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तो मध्ये तिष्ठस्ति राजसार, जगन्य गुण वृत्तस्तो अधो गच्छन्ति तामसार, सत्वगुण में कार्य करेंगे ऊपर के लोकों में जाएंगे, रजोगुण में कार्य करेंगे तो बीच में रहेंगे और तमोगुण में कार्य करके नीचे, जिस जिस देवता की पूजा करेंगे तो उस देवता के लोक में जाएंगे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस जगत के सारे गृह जिनमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित है अस्थायी रूप से स्थित होते हैं और कुछ निश्चित काल के बाद उन सब का विनाश हो जाता है। आब्रह्म भुवनालोक का पुनरावृत्ति नोर्चुना, सारे लोक एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतएव देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के समय विनष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवान के भगवत धाम में पहुंच जाता है वह शाश्वत जीवन का लाभ भोगता है। यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। देवताओं के उपासकों को नास्तिकों की तुलना में एक लाभ है कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं कि जो नास्तिक होते हैं, जो शास्त्रों पर यकीन नहीं करते हैं, वो जो शास्त्र को स्वीकार नहीं करते हैं, वो तो निपट भौतिकतावादी हैं और उनके ऊपर तो पता नहीं कभी कृपा होगी या ना होगी, क्योंकि वो लोग तो स्वीकार ही नहीं करते ना वैदिक वामने को। लेकिन देवताओं के जो उपासक होते हैं वो नास्तिकों की तुलना में उनको एक लाभ मिलता है। क्या मिलता है कि वैदिक निर्णय से आश्वस्त होते हैं, वो स्वीकार करते हैं इस देवता की पूजा करेंगे तो ये मिलेगा, और वेदों से वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगर वो वेदों को तो मान ही रहे हैं, फिर अगर किसी शुद्ध भक्त के द्वारा उनको शास्त्र श्रवण करने का अवसर मिल जाए, जैसे सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, भगवत ये चलो भावो यत भागवत संगता, बस एक शुद्ध भक्त की संगति उसको मिल जाएगी और परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त करेगा। किंतु निपट भौतिकतावादी को वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा ही नहीं होती है, अतएव वह सदैव अपूर्ण योग प्रयोगात्मिक ज्ञान तथा कथित भौतिक ज्ञान के आधार पर जुटे विचार पर मैं यकीन करता है, जो कभी भी दिव्य ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाता। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। वे कहते हैं जब तक जीव का किसी शुद्ध भक्त के साथ संपर्क ना हो जाए तब तक उसका कल्याण होना संभव ही नहीं है। इसी वे कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अतएव जब तक निपट भौतिकतावादी या क्षणभंगुर देवताओं के उपासक भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कोई आध्यात्मवादी के संपर्क में नहीं आ जाते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। केवल दैवी पुरुषों या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही उसे उन्नतशील जीवन का सही मार्ग दिखा सकता है, अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई जानकारी न होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों ही भौतिकतावादी जीवन शैलियां मृग रुचिका के विभिन्न पहलू हैं। चाहे वो भले ही ईश्वर की किसी भी देवता को स्वीकार नहीं करता है या फिर देवताओं को पूज कर वो भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा करता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते क्या फायदा, भगवान को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं किया तो जीवन ऐसे ही नीरस रहेगा, कभी भी आनंद आने वाला नहीं है। चाहे सारे देवता मिलकर सारे ही वरदान क्यों न दे दें, लेकिन वो सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सर्व निःश्रेयसोदया, जो सबसे उच्च सिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि क्या है, भगवत्य चलो भावो, भगवान के अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाए। केवल भगवान ही हमें वास्तविक आनंद प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई जानकारी ना होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में संलग्न जीवन, ये दोनों ही भौतिकतावादी जीवन शैलियां मृग मृचिका के विभिन्न पहलू हैं। मतलब ऐसा लगता है कि ये प्राप्त करके आनंद आएगा। मृग मरीच का मतलब दूर से पानी दिखता है लेकिन आगे पहुंच के देखते हैं तो वही सूखा पड़ा होता है। दूर से लगता है कि भौतिक वस्तुएं प्राप्त करके आनंद आएगा, लेकिन वो मृग मरीचिका के विभिन्न पहलू हैं। इसकी सुंदर व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में की गई है, लेकिन यहाँ श्री प्रभुपाद जी पुनः सावधान करते हैं कि भगवद गीता को शुद्ध से भक्तों की संगति में ही समझा जा सकता है, निर्विशेषवादियों, राजनीतिज्ञों या शुष्क ज्ञानियों की विवेचनाओं से नहीं। कोई शुद्ध भक्त के द्वारा यदि हम भगवद गीता को समझते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये ही संस्पर्श लाभ होगा, दुख एवते। इस भौतिक जगत में जो वस्तुओं को देख कर हम सोचते हैं कि देवताओं से ये वस्तुएं प्राप्त करेंगे और आनंद प्राप्त होगा, वही वस्तुएं हमारे दुख का कारण बनती हैं। आगे यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी इसके आगे श्लोक नंबर 12 में बताते हैं, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम आत्मा प्रसाद उतयत्र गुणेश्व संग कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम आत्मा प्रसाद उतयत्र गुणेश्व संग कैवल्य सम्मत पथ त्वथ भक्ति योग को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्विचक्र आत्मा प्रसाद उतयत्र गुणेश्व संग कैवल्य सम्मत पथ त्वथ भक्ति योग को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। तो यहाँ शुकदेव गोस्वामी कथा बता रहे हैं, ज्ञानम यदा, वह दिव्य ज्ञान जिसके द्वारा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र, प्रतिनिवृत्त यानी पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं। जब किसी शुद्ध भक्त के द्वारा भगवान के विषय में श्रवण करने का अवसर मिलता है तो वो जब भगवान का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं तो क्या होता है, उस ज्ञान के द्वारा प्रतिनिवृत्त वो सब कुछ निवृत्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या गुणोर्मि चक्रम यानी भौतिक गुणों की जो तरंगे हैं, जो भौतिक गुण है ना, प्रकृति इस प्रकृति का जो समुद्र है, संसार समुद्र का जो आकर्षण है, उसकी तरंग है, उसकी भंवरें, वो सब निवृत्त हो जाती हैं। संसार का आकर्षण तब तक ही बाकी है जब तक कि हृदय के अंदर दिव्य ज्ञान की सुफूर्ति नहीं होती है। ये जब दिव्य ज्ञान हृदय में उत्पन्न होता है तो पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं। और ये सब भौतिक वासनाएं, ये तरंगे, ये भंवरें जब समाप्त हो जाती है ना, तब क्या होता है, आत्मा प्रसाद, आत्मा संतुष्ट होने लगती है। क्योंकि ये भौतिक वासनाएं पूरी करते 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 हम थक जाएंगे, लेकिन वो भोगों की आकर्षण समाप्त नहीं होंगे, वो आकर्षण सदैव बढ़ते जाएंगे। इसलिए आत्मा उन भोगों को भोग रही है ना जाने करोड़ जन्मों से, लेकिन जब उन भोगों की आसक्ति हृदय से समाप्त हो जाएगी ना, पूर्णतः प्रतिनिवृत्त, पूर्णतः जब निवृत्त हो जाएंगे, तब आत्मा संतुष्ट होगी। आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेषु संग, और गुणेश्व संग यानी गुणों के ओर से अनासक्ति हो जाएगी। जब अनासक्ति हो गई दिव्य ज्ञान के द्वारा, पूरी जो वो पूर्णतः आसक्ति समाप्त हो जाती है, तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है। और उसके उपरांत क्या होता है, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग। इसलिए यहाँ पर कैवल्य शब्द बताया गया। कैवल्य मतलब एकमात्र साधन है भक्ति योग। कैवल्य सम्मत पथोस्थ भक्ति योग, सिर्फ भगवान की भक्ति के द्वारा ही एकमात्र। कैवल का मतलब है और कुछ नहीं है, भक्ति योग के अतिरिक्त चाहे संसार के सारे ही साधन अपना लो, लेकिन आत्मसंतुष्टि संभव नहीं है। इसलिए ईश साक्षात्कार यानी भगवत साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग को यहाँ पर कैवल्य बताया गया है। कैवल्य और भक्ति योग जो है वो इतना सक्षम है कि हृदय के अंदर जब भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है, जैसे यहाँ पर पिछले श्लोक में बताया कि भगवत यचलो भावो यद भागवत संग, जब भगवान के लिए हृदय के अंदर भाव उत्पन्न होता है ना, वो भाव उत्पन्न हो जाएगा, उसके बाद स्वतः बाकी सारे भाव समाप्त हो जाएंगे, सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, सारी वासनाएं, सिर्फ वो भाव उत्पन्न होने की देर होती है। इसलिए भगवान को भी कैवल्य कहा जाता है, यानी केवल वो ही जीव को आनंद प्रदान कर सकते हैं। जीव आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए भगवान को भी कैवल्य कहा जाता है। और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंचने में समर्थ बनता है, वह कैवल्य पंथा अर्थात भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन कहा जाता है, और वो क्या है, भक्ति योग। ये जो थर्ड लाइन है उसमें क्या बताया गया है कि पहले बताया गया कि दिव्य ज्ञान के द्वारा जो भौतिक गुणों की तरंगें और भंवरें पूरी तरह से नाश हो जाती हैं, उसी से आत्मा संतुष्ट होती है, क्योंकि भौतिक आसक्ति समाप्त होती है। और उस आसक्ति समाप्त करने का एक ही तरीका है, क्या, कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग। केवल भक्ति योग के द्वारा ये संभव है। और आगे सुखदेव गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर बात कहते हुए कहते हैं, को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। तो भला ऐसा कौन होगा जो भगवान की उन कथाओं के प्रति आसक्त नहीं होगा। हरि कथा सुरतिम, भगवान की कथाओं में रति नहीं होगी जिसको, क्योंकि भगवान की कथाओं के द्वारा ही तो भक्ति योग उत्पन्न होता है। वास्तव में भक्ति योग की प्रारंभ उस समय से होता है जब जीव के हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के विषय में श्रवण करने की इच्छा होती है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि वो कौन बेवकूफ होगा जिसको भगवान की कथाओं को श्रवण करने की इच्छा नहीं होगी। कौन निवृत्तो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। यहाँ पर तो वे कहते हैं कि ऐसा कौन होगा जिनको भगवान की कथाओं को श्रवण करने की इच्छा नहीं होगी। और आज के समाज में हम देखें तो हमें ये बोलना पड़ता है कि ऐसा कौन है, आखिर ऐसा कौन है जिसको आज भगवान की कथा को श्रवण करने की इच्छा होती है। कोई किसी को भौतिक वस्तुएं सुनाने के लिए कहा जाए ना, तो वो बगैर टाइम देखे 2-3 घंटा किसी की निंदा होगी, किसी के बारे में ऊट पटांग बातें सुनने का, गाने सुनो, फिल्में देखो, टीवी देखो, इसमें बहुत बहुत समय देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन भगवान के विषय में श्रवण करने के लिए समय नहीं निकलता, इच्छा भी नहीं होती है कि किसी को पता चले डेली आपको भागवतम श्रवण करना है 1 घंटा 1.5 घंटा, तो परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे इतना टाइम नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं वास्तव में बुद्धिमान वही है जो भगवान की कथाओं में जिसकी रति होती है। कौन निवृत्त हरि कथा सुरतिम न कुरियात, वो कौन बेवकूफ होगा जो भगवान की कथा को सुनने की इच्छा नहीं करेगा। अनुवाद देखिए, परम भगवान हरि विषय दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगों तथा भंवरें पूरी तरह से थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकर्षित नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं 10.9 श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार शुद्ध भक्तों के लक्षण अत्यंत ही अद्भुत हैं। मच्चित्ता मत कहता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती चरमती च। भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के मन, उनके विचार सदैव मुझ में स्थित होते हैं। वो मेरे बारे में बात करने में और श्रवण करने में बहुत उत्सुक होते हैं और उसी से तुष्यंती चरमती च बोधयंत परस्पर, वो मेरे बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और उसी से उनको आनंद होता है। इसी श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं शुद्ध भक्तों के लक्षण अत्यंत अद्भुत होते हैं। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं का परस्पर विनिमय करते हैं और दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए तो साधन अवस्था में भी यह दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। वास्तव में भक्ति में इतना आनंद है कि भक्ति करके कहीं पहुंचकर आनंद नहीं आता है। वो जो भक्ति का पंथ है ना, साधन अवस्था जिसमें हम वो कार्य कर रहे होते हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे होते हैं, भगवान की आरती कर रहे होते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान के नाम को जप करते हैं, उसी में बहुत आनंद है। और परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति भगवान के साथ उस विशेष संबंध की अनुभूति में होती है जो जीव आत्मा की मूल वैधानिक अवस्था होती है। यह अवस्था भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक हो सकती है जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साधन अवस्था में इतना आनंद आता है भक्ति, ये कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योग। भक्ति योग इतना सुगम है, इतना रसीला है कि साधन अवस्था में इतना आनंद है और जब परिपक्व अवस्था आती है, परिपक्व अवस्था क्या है कि भगवान के साथ विशेष संबंध अनुभव किया जाता है और जब संबंध स्थापित हो जाता है, प्रेममय संबंध। अब संबंध की बात हम जब करते हैं तो इस भौतिक जगत में भी जब आप किसी से प्रेममय संबंध स्थापित करते हो तो उसमें आपको रस मिलता है। हालांकि जैसे अगर किसी को, किसी माता को अपने पुत्र से प्रेम है तो बहुत खुश होती है जब उसका पुत्र हंसता है, जब वो उसको प्रेम करती है, जब प्रेम का आदान प्रदान होता है माता और पुत्र में तो कितना आनंद आता है। उसी तरह से जब दो सखा का आपस में बहुत ज्यादा मित्रों का बहुत ज्यादा स्नेह होता है और जब वो आपस में मिलते हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, केवल एक दूसरे को, है ना, रात रात बीत जाती है, बातें कर रहे होते हैं और आनंद आ रहा होता है ना, भौतिक संबंधों की बात कर रहे हैं। उसी तरह से जब प्रेमी और प्रीतम का मिलाप होता है, जब इस भौतिक जगत में कोई प्रेम करता है किसी से, उसका जब मिलन होता है तो संसार की हर एक वस्तु उनके आगे तुच्छ होती है। वो बस ऐसा लगता है कि वो हमारे मिलन का आनंद ही सबसे ज्यादा। हालांकि ये भौतिक एग्जाम्पल्स तो हैं, लेकिन इनमें कुछ सत्य नहीं है, कुछ तथ्य नहीं है। जैसे बच्चा जब तक पैदा नहीं होता है ना, माँ बाप से उसका कोई संबंध नहीं होता है, कोई लिंक नहीं होता है। जब विवाह नहीं होता है उस कन्या का, उस पति के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता है। उसको तो पता भी नहीं होता है कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, लेकिन विवाह के साथ वो पति उसका जीवन बन जाता है। ये एक संबंध का सौंदर्य है कि जब पुत्र के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है, जब तक माता के गर्भ में वो जीव आत्मा नहीं डाली जाती है तब तक कुछ लिंक नहीं होता है, लेकिन जब उसके गर्भ से उत्पन्न होती है तो कितना प्रेम बढ़ जाता है। जब तक उसका मित्र नहीं होता है वो, तब तक तो वो एक अलग कौन होता है। जब जैसे हम किसी स्कूल में एडमिट होते हैं, उस स्कूल के कुछ विद्यार्थी होते हैं, उनके साथ मित्रता, लेकिन जब उस स्कूल में नहीं थे हम, उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं था, लेकिन संबंध जैसे जुड़ा तो प्रेम उत्पन्न हुआ, और प्रेम उत्पन्न होते ही हमारे साथ आनंद। जैसे एक लड़की एक लड़का आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रेम का संबंध उत्पन्न हो जाता है तो फिर क्या होता है, वो प्रेम का संबंध आनंद देने लगता है। ये भौतिक आनंद तुच्छ है वो एक अलग बात है, ये भौतिक आनंद इटर्नल नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन भौतिक जगत में भी आनंद का कुछ अनुभव करते हैं ना, लेकिन वो आनंद क्षणिक है, समाप्त होने वाला है, क्षण भंगुर है, केवल इस शरीर पर ही आधारित है। जैसे ही वह शरीर छूटेगा, माता पुत्र का संबंध टूट जाएगा, सखा का संबंध टूट जाएगा, यहां तक कि पति पत्नी का संबंध भी टूट जाएगा। लेकिन वह भगवान जिससे हमारा अनादिकाल से संबंध है, जो सनातन संबंध है, जो कभी नहीं टूटेगा, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, भगवान कभी क्षय नहीं होते, भगवान कभी समाप्त नहीं होते, भगवान सदैव है, और भगवान के प्रति हमारा प्रेम कभी बदलता नहीं है। जब वो संबंध उत्पन्न हो जाता है, जब वो संबंध जागृत हो जाता है, तो परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति भगवान के साथ उस विशेष संबंध की अनुभूति होती है, जो जीव आत्मा की मूल वैधानिक अवस्था है। ये वास्तविक आनंद प्रदान करने वाला है। यह अवस्था भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक हो सकती है, जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना जाता है। इससे अधिक और कोई आनंद हो ही नहीं सकता। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए ईश साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग कैवल्य कहलाता है। इस संदर्भ में श्रीजीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत करते हैं। एको नारायणो देव परावणानां परम आस्ते कैवल्य संगीतः। और यह प्रस्थापित करते हैं कि भगवान नारायण ही कैवल्य हैं, और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंचने में समर्थ बनता है वह कैवल्य पंथ अर्थात भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन है, और वो क्या है, भक्ति। यह कैवल्य पंथ का प्रारंभ श्रवण से होता है, अर्थात परमेश्वर से संबंधित विषयों के बारे में सुनने से भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है, और ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है, जिससे संसारी कथाओं से विरक्त उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही भगवान के विषय में श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और जैसे ही जीव बहुत ही सिंसियरिटी के साथ भगवान के विषय में श्रवण करना शुरू करता है, उससे खुद ब खुद भौतिक वस्तुओं की आसक्ति समाप्त हो जाती है, और जिसके लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती, भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारे संसारी कार्यकलाप, चाहे वे सामाजिक हों या राजनीतिक हों, अनाकर्षक बन जाते हैं। और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अनासक्ति हो जाती है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति जो है वो भौतिक आसक्ति को समाप्त कर देती है। और जब भौतिक आसक्ति का क्या मतलब होता है, भौतिक वस्तुओं को खाने की, भौतिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा तो छोड़ दीजिए, जब भक्त परिपक्व अवस्था में हो जाता है ना, तो अपने शरीर तक से अनासक्ति होने लगती है और शारीरिक संबंधियों की तो बात ही नहीं उठती। ऐसी दशा में वह भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता, भले कितना ही भौतिक माया आकर्षित करे लेकिन वो विचलित नहीं होता। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुण होते हैं और जिन सारे संसारी कामों में सामाजिक व्यक्ति अत्यधिक रुचि लेता है या भाग लेता है, वे भक्त के लिए अनाकर्षक बन जाते हैं। यहाँ पर इस अवस्था को प्रतिनिवृत्ति गुणोर्मी, जैसे शुरू वाली लाइन में कहा गया ना, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्ति गुणोर्मी चक्र, ये सारे जो भाव हैं उनसे निवृत्ति हो जाती है, वो सब का आकर्षण जो है वो समाप्त हो जाता है। और यह आत्म प्रसाद अर्थात किसी प्रकार के भौतिक संबंध के बिना की आत्म तुष्टि द्वारा संभव है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रथम कोटि का भगवत भक्त महाभागवत भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कि कौन सी अवस्था को, जब उसको भौतिक वस्तुओं का तनिक भी आकर्षण नहीं होता, भौतिक संबंधों की ओर तनिक भी आकर्षण नहीं होता, यहाँ तक कि अपने शरीर से भी आकर्षित नहीं होता है, तो प्रथम कोटि का भगवत भक्त भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त करता है। किंतु अपनी महानता के बावजूद वह भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की महिमा का उपदेशक बन सकता है और वह इसी भक्तिमय सेवा में सभी वस्तुओं को अपने सांसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है, जिससे नौसिखिए भक्तों को अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणित करने का अवसर मिल सके। शिला रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के इस कार्य को निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य उच्यते। इसका मतलब यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि भौतिक आसक्ति समाप्त हो जाती है, भौतिक वस्तुओं से आकर्षण समाप्त हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैरागी बनकर जंगल में चला जाता है, नहीं, सारी वस्तुओं को यूज करता है लेकिन कैसे, निर्बंध आसक्ति समाप्त कृष्ण संबंधे, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सारी वस्तुओं को, सारे संबंधों को, वो संबंधों को भी भगवान की भक्ति में लगाने का प्रयास करता है। युक्त वैराग्यम उच्यते, उसी को वास्तविक वैराग्य कहते हैं। यदि सांसारिक कार्यों को भगवान की सेवा से जोड़ दिया जाए तो वे भी दिव्य या प्रमाणित कैवल्य कार्य बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्त को सारी चीजों को भगवान के साथ जोड़ देना चाहिए, अपने संबंधों को, अपने शरीर को, अपने वैभव को, अपने धन को, जो कुछ भी उसके पास है उस सबको भगवान की सेवा में यदि वो लगाता है तो वो सारी वस्तुएं दिव्य हो जाती हैं और वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यूज हो सकती हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरी प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।